आप हजरात खुद ही अपने जहन को मैं वो पिक्चर लेकर आइए और सोचिए कि क्या क्या उसके इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। फरमाया ज़ुहूर इमाम से पहले मक्का मुकर्रमा एक हबशी के कंट्रोल में जाएगा, हबशी माने ब्लैक स्किन, किस मुल्क का होगा, कहां की नेशनलिटी होगी, ये नहीं हदीस हो। इमाम ने कहा मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, ये खान है खुदा की छत पे एक हबशी ब्लैक कलर वाला आदमी बैठा हुआ शराब पी रहा। अब इसकी वर्डिंग को इस तरह ना लीजिए, खान है खुदा की छत पे बैठा है और शराब पी रहा, दैट मीन्स मक्का पूरा उसके कंट्रोल में और खुद शहर मक्का के अंदर खुल्लम खुल्ला गुनाह हो रहे हैं। उसके बाद फिर सुफियानी आएगा, रोजा रसूल का तो वो खात्मा कर देगा। इस वक्त सऊदी अरब ने जो मस्जिद नबवी का नया एक्सपेंशन प्लान पेश किया उसमें रोजा रसूल को तोड़ना भी शामिल है। और इंशाल्लाह एक मजलिस में मैं थोड़ा सा उसका जिक्र इसलिए करूंगा कि हज और उमरे पे मैं इतने सालों से जा रहा हूं कि बहुत सारी ऐसी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है और आम लोगों के पास नहीं होती, लेकिन वो बाद में। अभी सिर्फ इतनी सी बात कि सुफियानी मस्जिद नबवी को डिमोलिश कर देगा और रोजा रसूल तोड़ के फेंका जाएगा, खाने खुदा पे अटैक करने आएगा तब इमाम आएंगे। तो अब देखिए इसका मतलब क्या निकला कि इमाम को इमीडिएट जिहाद करना है सुफियानी के खिलाफ। इसने मदीना तबाह कर दिया, मक्के पे अटैक कर रहा, आए इमाम सुफियानी का मुकाबला करने और पहला जिहाद इमाम को करना पड़ा अपने शियों से जो मक्के में आ गए थे। कौन शिया जो इतने बेचैन थे और इतने एक्साइटेड थे इमाम जमाना को वेलकम करने के लिए कि इधर जिब्राइल ने कहा मक्के में इमाम आए, ये दौड़ के मक्के पहुंचे और पहला ही जिहाद इमाम को इनके अगेंस्ट करना पड़ा। अब ये पहली हदीस जिसकी मदद से हमारा टॉपिक आगे बढ़ेगा करबला से इमाम जमाना तक। छठे इमाम के पास जो साहबी बैठे थे वो घबरा गए, मौला आपने जो कहा हमें यकीन है मगर दिल कबूल नहीं कर रहा, आखिर इमाम का इंतजार करने वाले शिया इमाम के अगेंस्ट क्यों हुए। कहा कि दो रीजन से, पहला रीजन वो ये कहेंगे कि ये इमाम हमें झूठा इमाम लग रहा है, शायद गुजराती में खोटा इमाम कहते हैं, ये झूठा इमाम लग रहा क्योंकि ऐसी ऐसी बातें कह रहा है जो हमने आज तक नहीं सुनी, शरीयत वाजिबात हलाल और हराम लोगों को ये नई बातें लगेगी। यहीं से मेरी मजलिस शुरू हुई, लैक ऑफ नॉलेज का नतीजा ये होगा कि आज कुछ लोग मुश्तहिदीन पे एतराज करते हैं ये फतवा कहां से आ गया, और कल यही एतराज इमाम पर होगा कि इमाम ये हुक्म कहां से दे रहे हमने तो आज तक नहीं सुना। बहुत सी इसकी एग्जाम्पल भी है लेकिन इंशाल्लाह अभी तो जस्ट स्टार्ट है हमारे सब्जेक्ट का। बस ये जुमला याद रखिए कि इमाम की बताई हुई बातें लोगों को नहीं लगेंगी। मसलन इमाम कहेंगे कि खाने काबा को तोड़ो और नया काबा बनाओ, अब वो नया काबा लोगों को इतनी अजीब बात लगेगी कि इमाम के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये बातों की डिटेल आएगी। दूसरी बात, दो चीजों की वजह से लोग इमाम के अगेंस्ट होंगे। दूसरी बात कहेंगे कि इमाम बड़ा स्ट्रिक्ट है, जरा जरा सी बात पे पनिश करता, ये रहमतुल लिल आलमीन का बेटा तो नहीं हो सकता, इमाम को तो बड़ा पोलाइट होना चाहिए। और किस चीज का नाम है पोलाइटनेस, हम नमाज कदा करें इमाम हमसे कुछ ना कहें, हम किसी का माल खा लें इमाम हमसे कुछ ना कहें, हम शराब पिए इमाम हमसे कुछ ना कहें। जैसे आज भी बाद लोगों का ये नजरिया है कि अगर तुमने इमाम को मान लिया कोई भी गुनाह करो न कब्र में प्रॉब्लम है न कयामत में, उस वक्त लोग इमाम से वाकई ये एक्सपेक्ट करेंगे। जिस कौम का मिजाज ऐसा हो जाए कि अगर एक स्टूडेंट मुझ जैसा मेंबर से कब्र का अजाब पढ़ दे तो कोई कहे कि जहन्नम वाले बापू आ गए हैं, कोई कहे कि ये ड्राकोला ऑफ इस्लाम आ गए हैं, कोई कह दे कि सांप और बिच्छू वाले आ गए हैं। खाली वो जबान से पढ़ रहा है, इमाम तो बाकायदा बाय फोर्स उन चीजों पर अमल करवाएं। कहा हम इनको इमाम नहीं मानते। ये दो बात है। इस दूसरी बात का मैसेज आपको, देखिए पहली बात का मतलब क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, जो दो दिन हमारा टॉपिक। दूसरी बात का मतलब क्या, इमाम का लाया हुआ मिशन बहुत सख्त लगेगा। इसका मतलब क्या कि अगर इमाम के आने से पहले आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, भाई इमाम के आने के बाद क्यों आप नमाज का इंतजार कर रहे हैं? अगर अभी से नमाजी बन जाए तो इमाम के आने के बाद नमाज आपको कोई मुश्किल इबादत नहीं लगेगी। उनको मुश्किल लगेगी जिन्होंने जिंदगी में नमाज नहीं पढ़ी, अब इमाम पढ़वा रहे हैं। मौलाना और रेसिडेंस आलिम तक तो बात थी, वो खाली मेंबर से कहते थे, एक कान से सुन के दूसरे कान से मुड़ा जाते ही नहीं थे मजलिस में, अब इमाम तो बाय फोर्स नमाज पढ़वाएंगे। तो पहले ही से अपने आप को ऐसा क्यों ना बना लो। चुनाचे ये दो चीजें बहुत ही अहम मैसेज बने। पहला वाला मैसेज अब मैं रिपीट नहीं करूंगा, लैक ऑफ नॉलेज, जितना अपने नॉलेज को आप बढ़ाएंगे उतना इमाम की तैयारी करें। और नंबर दो, कैरेक्टर के एतबार से पहले ही से वैसा बन जाओ जैसा इमाम बनाना चाहते हैं। और ये है वो 25 चीजें जो लश्कर इमाम की बेसिक कंडीशंस, वो 25 बातें मैंने इन शॉर्ट आज बताया, ताकि जो लोग वीकेंड के बाद नहीं आएंगे कल से, उन्हें भी एक किस्म का मैसेज मिल गया। और यही वजह थी कि आप हुसैन के लश्कर को देखिए, ऑलरेडी इतना वो अपने आप को चेंज करके हुसैन के लश्कर में आए हुए, उनके लिए हुसैन का जिहाद कोई मसला नहीं बना। आप बताइए मुझे, एक कंप्लेन आपको लश्कर हुसैन में नजर आई कि किसी ने कहा कि मौला दिन दिन की भूख तो बहुत ज्यादा होती है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही? एक कंप्लेन किसी ने कही कि मौला तीन दिन की प्यास तो बहुत ज्यादा होती है, बर्दाश्त नहीं होती? शहीद बाकरे सदर, इनका तस्करा दो दिन पहले आ गया था, बहुत मुख्तसर। जब यतीम हुए थे तो इनकी एज 8 साल या 9 साल थी। काजमैन का रहने वाला है ये खानदान, सदर खानदान, इराक का एक बहुत ही काबिल एहतराम सैयद घराना, काजमैन वहां पे ये रहते थे। और वो जमाना है सद्दाम वद्दाम से बहुत पहले का, हौजे हमारे आबाद थे, तालिब इल्म। 8 मिनट वाला वादा पूरा नहीं हो रहा, जल्दी से बात खत्म करूं। जब ये रोजाना देखते थे कि काजमैन में जो हौजा है 7वें और 9वें इमाम के रोजे से बिल्कुल एडजेसेंट, स्टूडेंट्स जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अबा अमामा दोपहर को वापिस आ रहे हैं, जैसे यूनिवर्सिटियों का एक माहौल होता है, ये बड़े इंप्रेस। 9 साल की एज है, जो हमारे बच्चे कंप्यूटर गेम और मजलिस में भी आईफोन के साथ हंसी मजाक करते रहते। अपनी माँ के पास आए, बेवा माँ जो जवानी में बेवा हो गई, और कहा कि मादर गरामी, मेरा दिल चाहता है कि मैं भी ऐसा ही आलिम बनूं और ये वाली तालीम हासिल करूं। मजहबी घराने की माँ होगी बहुत खुश हो, और अगर एंटी रिलीजन होगी बहुत नाराज होगी। स्कूल यूनिवर्सिटी जाओ, मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करो, कोई प्रोफेशनल डिग्री हासिल करो, ये क्या बन रहा है मौलवी मुल्ला? और अगर मजहबी औरत है खुश होगी। लेकिन माँ समझदार थी, मजहबी होना या एंटी मजहब होना मसला नहीं है, सेंसिबल। कहा कि बेटा अगर आलिम बनना है तो ऐसा आलिम बन के दिखाना कि जो इमाम के मिशन के लिए फिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हो। और अगर एक ऑर्डिनरी से आलिम बनना है तो कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आने का, कोई और फील्ड तलाश करो। बताओ क्या इरादा? 9 साल के बच्चे से उसकी माँ ये सवाल कर रही। अच्छा, शहीद बाकरे सदर थे, जीनियस थे। हमारे यहां तकरीबन 20 ईयर्स का कोर्स है तब एक आदमी मुश्तहिद बनता, आफ्टर 20 ईयर्स एजुकेशन। और शहीद बाकरे सदर 15 साल की उम्र में मुश्तहिद बन गए। लेकिन ये बात है अभी जो वाकया पढ़ रहा हूँ, 9 साल की एज थी जब उन्होंने रिलीजियस एजुकेशन स्टार्ट भी नहीं की। चलेगा, माँ से बात सुनी, चलेगा, बात खत्म, चैप्टर क्लोज। कई दिन गुजर गए, माँ भी यही समझे कि बच्चे का एक शौक था, उसने एक बात कही और भूल भाल गया। 1 महीने के बाद आए और कहा कि मादर गरामी आप मेरा एडमिशन हौजे में करा दी। बेटा वो 1 महीने पहले तक खामोश रहे, क्यों? कहा 1 महीने तक मैं खुद अपने आप को टेस्ट करता रहा, मैंने कई कई दिन पानी नहीं पिया, मैंने कई कई दिन खाना नहीं खाया, मैंने कई कई दिन खुद अपने आप पर वो टॉर्चर किया है जो इस्लाम में हराम की लिमिट तक नहीं जाता। खुद अपने आप को टेस्ट किया, जब मैंने देखा कि मैं फाके कर सकता हूं, जब मैंने देखा मैं प्यासा रह सकता हूं, जब मैंने देखा कि टॉर्चर मसलन बेडरूम में नहीं सो रहे जाके सड़क के ऊपर सो रहे हैं, तो मैं ये सब बर्दाश्त कर सकता हूं और मैं अपने आप से सेटिस्फाई हो गया कि ईमान के रास्ते पे चलने वाले को जितने प्रॉब्लम होते हैं मैं सबको फेस करूंगा। तब मैंने आकर अब आपसे रिक्वेस्ट की, मुझे हौजे में दाखिल कराई और ऐसा अजीम मर्जे बना कि सद्दाम के इतने मजालिम को बर्दाश्त किया, एक लफ्ज सद्दाम इनसे अपने फेवर में ना ले सका। मगर ये वाकया तो मैंने सिर्फ इसलिए कोट किया कि इमाम जमाना के आने से पहले अपने आप को बना लीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। वीकेंड, आज वीकेंड, इसलिए 5 मिनट ज्यादा हो गए, ये जो 8 मिनट कम करना थे 2 दिन, ये अब वीकडेज की मजलिस में कम होंगे। बस आखिरी बात, हुसैन के साथी करबला के मिशन में जब आ रहे हैं तो किस तरह से तैयार होके आ रहे हैं? अगर कि ये तारीख है, गम की ये तारीख है, असाबे इमाम के हवाले से है, एक आज और एक कल। नॉर्मली जो टुमारो नाइट है वो हजरत हुर के मसाए पढ़े जाते हैं और आज करबला के बाकी शहीदों, तो वहां तक बात ले जा रहा हूं, हुसैन के साथ। जरूरत नहीं है कि हुसैन का जिहाद शुरू हो फिर वो अपने आप को चेंज करे। और क्या इतना टाइम था आका हुसैन के पास कि वो इन लोगों का करबला बुलाते और हर एक कहता मौला 6 महीने दीजिए मुझे जरा अपने आप को चेंज करना। भूख का इम्तिहान तैयार, प्यास का इम्तिहान तैयार, तीर और तलवार का मुकाबला करना तैयार। देखिए करबला से इमाम जमाना तक का पहला मैसेज ये कि जिस तरह करबला के मुजाहिद जिहाद करबला शुरू होने से पहले तैयार हो चुके थे सिवाय खोर के, उसी तरह इमाम जमाना के आने से पहले अपने आप को तैयार कर दीजिए। बाकी बातें कल हों। और अकीदे की वजह से हमें पता है, अकीदे की वजह से कि अब्बास अब्बास हैं, अकबर अकबर हैं, कासिम कासिम। वरना अगर आप करबला के वाकयात को पढ़ें तो जिस अंदाज का जिहाद करबला के हर मुजाहिद ने किया है, बाज औकात तो हम ये फैसला भी नहीं कर पाते कि ये उम्मती घराने के आम से मुसलमान, मगर किसी जगह आपको उनके जिहाद में कमी नजर नहीं आई। यकीनन इनमें से कोई अकबर के करीब भी नहीं पहुंचता, लेकिन जिहाद का अंदाज तो देखिए, खाली खाली बनी हाशिम के नौजवानों को ना देखिए, उस हबशी गुलाम जॉन को भी देख लीजिए मैदान करबला में। जिहाद खत्म होने के बाद फकत एक लाशा ऐसा था जो फौरन पहचान लिया गया कि किसका लाशा है, बाकी लाशों की पहचान नहीं हो रही थी। क्यों? पहचान या चेहरे से होती है या लिबास से होती। सारे शहीद 72 के 72 सर काट लिए गए हैं, लिबास लूट लिए गए, सिर्फ एक लाशा ऐसा था और वो जॉन गुलाम हबशी का लाशा। बदन से ऐसी खुशबू बुलंद हो रही थी कि जन्नत की खुशबू भी क्या होगी जॉन के लाशे के मुकाबले। और क्यों? आका हुसैन की एक दुआ। यही तो है तारीखों में कि जॉन खानदान अहले बैत के बहुत पुराने गुलाम, सारी जवानी अहले बैत की खिदमत में गुजारी, अब बुढ़ापा आ चुका, मैदान करबला में पहुंचे, اور جب جہاد کربلا شروع ہوا تو سب سے پہلے آنے والوں میں کہ مولا مجھے بھی مرنے کی اجازت دی. آقا نے ایک جملہ کہا, جون تم نے ساری جوانی ہماری خدمت میں گزار دی, اب ہم نہیں چاہتے کہ بڑھاپے میں بھی تمہیں کوئی مصیبت یا زحمت یا پریشانی ہو, تم چلے جاؤ, یہ لوگ تمہیں روکیں گے بھی نہیں, ایک غلام حبشی کون روکے گا. جون کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ایک مرتبہ کہا کہ آقا یقیناً میں نے بہت بڑی بات کہہ دی, مجھ غلام حبشی کو یہ ریکویسٹ نہیں کرنا چاہیے تھی. مولا میں ایسا کہ میرا خاندان حسب و نصب بھی کسی کو نہیں معلوم, میرا رنگ کالا, میرا پسینہ بدبودار ہے. مولا یقیناً اسلام پہ اکبر جیسے ہاشمی شہزادے کو قربان ہونا چاہیے, مولا یقیناً اسلام پہ حبیب ابن مظاہر جیسے وفادار کو قربان ہونا چاہیے. ایک کالے رنگ کا بدبودار پسینہ رکھنے والا جس کے حسب و نصب کا بھی پتہ نہ ہو, اس کا خون ان شہیدوں کے خون کے ساتھ نہیں ملنا چاہیے. مقتل کا جملہ آیا, آقا حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا کہ جان جاؤ میں ان سب سے پہلے تمہیں اجازت دیتا ہوں, اور یہ تاریخ کا فقرہ ہے کہ جب زخمی ہو کے زمین پہ گرے تو وہی حسین جو عباس کے سرحانے گئے تھے, وہی حسین جو اکبر کے سرحانے گئے تھے, وہی حسین ان دونوں سے پہلے جون کے سرحانے آتے ہیں, زمین پہ بیٹھتے ہیں, جون کا سر اپنی گود میں رکھتے ہیں اور ایک مرتبہ کہتے ہیں اللہم بیض وجہ, خدا بندہ اس کے چہرے کو نورانی کر دے اور اس کے پسینے کو خوشبودار کر دے. اور ایسی یہ دعا قبول ہوئی کہ شام غریبہ کسی کا لاشا پہچانا نہیں جا رہا, فقط اپنے بدن کی خوشبو کی وجہ سے جان غلام حبشی کا لاشا. سعید ابن جبیر, اللہ لا, دیکھیں جب اس طرح سے جہاد کربلا کی پہلے سے تیاری ہو تو پھر اتنا بڑا اسٹیٹس ملتا. یہ جان کو آپ نے سنا, حسین کی گود میں سر ہے اور حبیب سے کہہ رہے ہیں کہ حبیب اس وقت اور رتبے میں میں تم سے بڑا ہو گیا, تم گھوڑے پر بیٹھے ہو اور میں حسین کی گود میں لیٹا ہوا. مگر سعید ابن جبیر کا رتبہ تو شاید اس سے بھی بلند آپ کو محسوس ہو, 90 سال کا بوڑھا. اچھا ہمارے یہاں مشہور ہو گیا ہے کہ حبیب ابن مظاہر بہت بوڑھے تھے, غلط, حبیب تو حسین کے ایج گروپ کے تھے, بوڑھے کا نام تھا سعید, 90 سال کی عمر تھی. کربلا کا جہاد شروع ہوا, جان مارے گئے, جان مارے گئے. اب ایک بار حبیب قریب آتے ہیں سعید اور آگے کہتے ہیں مولا میں بہت بوڑھا ہوں, میرے ہاتھوں میں راشا, نہ میں تیر پھینک سکوں, نہ میں نیزہ پکڑ سکوں, نہ میں تلوار سنبھال سکوں, مولا آخر میں کس طرح سے آج کے جہاد میں حصہ لوں. حسین نے کہا سعید ایک کام کرو, ظہر کی نماز کا وقت ہو رہا ہے, ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, تم ہمارے سامنے کھڑے ہو کے آنے والے تیروں کو روکو, اگر ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے تو اپنے سینے کو ڈھال بنا لو. اور ایک عجیب نماز ہم نے دیکھی کہ نماز پڑھنے والے حسین ہیں اور پیچھے سارے اصحاب کربلا ہیں اور ایک سعید وہ ہے جو اشاروں سے نماز پڑھتا رہا ہے, مگر آقا حسین کے سامنے اس طرح کھڑا ہے کہ سامنے سے تیر آئے اپنا سینہ بڑھا دے, دائیں طرف سے تیر آئے دائیں طرف جھک جائے, بائیں طرف سے تیر آئے بائیں طرف جھک جائے, آقا تک ایک تیر نہیں پہنچنا چاہیے, میرے بدن میں جتنے تیر لگتے ہیں لگ جائیں. اے سعید چند گھنٹے اور ٹھہر جاؤ, اور وہ وقت دیکھنا جب حسین زلجنا کے اوپر زخموں سے چور چور ہے, سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی ہے. سعید نے پتہ نہیں کس طرح سے یہ 2 رکعت نماز کے تیر تو برداشت کیے, مگر ادھر حسین نماز کے اختتام پہ پہنچے, ایک مرتبہ کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ, ادھر چکرا کے سعید اس طرح گرے کہ سعید کا سر حسین کی گود میں ہے اور ایک ہی جملہ کہتے حل وفیت ابن رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا, کیا میں نے حق وفا ادا کیا, کیا میرے قدم پیچھے تو نہیں ہٹے, کیا میں نے کہیں دغا سے کام تو نہ لیا. حسین جیسے صابر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, عباس کے لاشے پہ آنسو نہیں آئے, اکبر کے لاشے پہ آنسو نہیں آئے, لیکن سعید کا یہ جملہ سنا, سر سے پیر تک تیروں سے چھلنی اور فکر ہے, حل وفائی تو اپنا رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا. عجیب جملہ حسین نے کہا, یا سعید یا سعید انتا امامی فی الجنہ، میں جنت میں جاؤں گا وہاں بھی تو میرے آگے آگے چل رہا ہوگا، آگے آگے تو ہوگا، تیرے پیچھے حسین آ رہا ہوگا۔ ایک بار سعید نے گھبرا کے کہا، مولا مولا مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سرہانے آ کے بیٹھا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سر کے قریب آیا۔ حسین نے کہا، سعید بڑے ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا نانا رسول خدا ہے جو تجھے لینے آیا۔ تھوڑی دیر گزری، ایک مرتبہ سعید نے کہا، مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے بازو اور شانے دبا رہا ہے۔ حسین نے کہا، سعید ادب اور احترام سے سلام کرو، یہ میرا بابا حیدر کرار علی مرتضیٰ تجھے لینے آئے ہیں۔ تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا، مولا ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے سینے پہ ہوا جل رہا ہے۔ ایک مرتبہ کا سعید سلام کرو، یہ میرا بڑا بھائی اثر مشتبہ آیا ہے۔ اور آخری جملہ، تھوڑی دیر گزری، سعید نے کہا، مولا اور ایسا لگ رہا ہے کوئی میرے پائتی آ کے بیٹھا ہے، میرے پیروں کے قریب آ کے بیٹھا ہے۔ حسین نے کہا، سعید جلدی سے اپنے پیر سکیل لو اور ادب اور احترام سے سلام کرو، میری ماں فاطمہ زہرا آئی ہے، اے میرے لال کے وفادار، تجھے لینے فاطمہ زہرا جنت سے آ رہی۔ خدا بندہ تجھے حبیب ابن مظاہر اور حر شہید ریاحی اور جان غلام حبشی اور سعید جیسے امام مظلوم کے با وفا صحاب کا واسطہ، ہم میں سے بھی ہر ایک کو اسلام، ہم میں سے بھی ہر ایک کو امام، اور ہم میں سے بھی ہر ایک کو کربلا کا ایسا ہی جان اثار اور وفادار قرار دے۔ خدا بندہ صاحبان ایمان کے ناسوؤں کا واسطہ، ان کے آنسو روز قیامت رومال زہرا میں محفوظ ہو کے ہماری اور ان کی شفاعت کا ذریعہ قرار دے۔ خدا بندہ اس صدائے گریہ کا واسطہ، جن جن کے دلوں میں کوئی حاجت ہے، تجھے بے حق فاطمہ، تجھے حسین کی دکھیاری ماں زہرا کا واسطہ، ان کی ساری حاجتوں کو پورا فرما، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو روزی کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما۔ پروردگارا دنیا میں جہاں جہاں آج بھی شیعان حیدر کرار محبت حسین کے جرم میں ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن رہے، خصوصاً بحرین، خصوصاً سیریا، خصوصاً پاکستان، خصوصاً سعودی عرب، خداوندہ ان سارے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما اور ان سارے ظالموں کو نیست و نابود فرما، اور خداوندہ ہمیشہ ہمیشہ کے ظلم کے خاتمے اور کربلا کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین فرزند زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ماتم حسین۔